نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سينوپسس اف قران قران پاک کی جھلکیاں یہ ہے ہمارا آج کا خوبصورت سیشن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آج قرآن پاک کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم بہت کوئک پیس پہ صرف قرآن پاک کا مزاج سمجھیں گے. آپ نے اپنے بچپن میں کسی کتاب کے شروع میں کوئی انڈیکس دیکھا ہوگا کتنا کو لمبا ہوتا ہے, اس میں کتنی کو باریکیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو اس سیٹ کو, اس سیریز کو سننے والوں کو اپنے ذہن سے اس چیز کے ساتھ رہنا میرے کہ ہم صرف اپنا شوق ابھارنے لگے. دعوتوں میں کھانے سے پہلے آج کل اپٹائزر دینے کا رواج ہے. میں وہ کہتی ہوں کہ لوگ پہلے پیٹ بھر دیتے ہیں اور بعد میں بھوک ہی نہیں رہتی, تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ ہم ایسا کچھ نہ کریں کہ آپ یہ سنیں اور اس کے بعد پھر آپ دورہ قرآن بھی نہ سنیں اور آپ سوچیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ چل گیا. تو یہ صرف ایک لائٹ سی آپ کی بھوک کو بڑھانے والی چیز ہے, شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ. سائنوپسز آف قرآن, قرآن کی جھلکیاں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, پھر ہے کوئی جو نصیحت لینا چاہے. قرآن پاک کی یہ آیت ہم سب کو بتاتی ہے کہ قرآن بہت آسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے انسان کا دل, دماغ سب تیار ہونا چاہیے. آپ کو مجھے اس وقت اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھنا ہے, اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے اس کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ میرے مالک میرے دل دماغ کو کھول دے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے وہ کتاب رکھی بھی ہے کہ جس نے انسانیت کو جینا سکھایا, امت مسلمہ کی فلاح و بہبود, اور اسی طرح سے امت مسلمہ کو عزت دلوانے والی یہ کتاب ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. تو سائنوپسس آف قرآن کیا ہے؟ اصل میں ہم صرف قرآن پاک کا انڈیکس دیکھنے لگے ہیں اس شعور کے ساتھ, اس شوق کے ساتھ کہ ہم پھر اس کو سیکھنے کی مزید طلب اور کوشش رکھیں. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, پارہ نمبر ایک ہے. میں طریقہ کار کیا کروں گی آپ کو ابھی سے بتا دوں. سب سے پہلے ہر پارے کے شروع میں پورے پارے کا دو یا تین منٹ میں خلاصہ دوں گی. آپ کے لیے یہ بہت قیمتی ہوگا. آپ صرف اتنا بھی آج لکھ کر چلے گئے تو آپ کا کام ہو گیا. پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر ایک ہلکی سی, جیسے بیپ کہتے ہیں نا, جھلک ڈالیں گے, اور جہاں ضرورت ہوئی ہم انشاءاللہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات بھی لیں گے. تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اس کو نازل کیے جانے کا مقصد انسانیت کی ہدایت تھی. پورے قرآن پاک میں کیا ہے؟ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا؟ میرے یہ خیال آیا تھا سب سے پہلے جب اس کے بعد اللہ نے پھر راستے ہی کھول دیے. کہ اب تو ہر دن اس کے اندر ڈبکیاں لیتے ہیں نا, 24 گھنٹے اسی قرآن کے ساتھ دل دماغ جڑتا ہے. لیکن جس چیز نے مجھے سب سے پہلے اس قرآن کی طرف مائل کیا تھا وہ کیا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا؟ آپ دیکھیے تجسس تو انسان کی فطرت میں ہے نا, تو وہی سسپینس, وہی تجسس دل میں تھا, اور الحمدللہ پھر اللہ نے راستے کھولے. تو سب سے پہلے تو آپ کو پورے قرآن پاک کا سائنوپسس دے دوں. چار بنیادی مضمون ہیں پورے قرآن کے. نمبر ایک, عقائد, کریڈ کہہ سکتے ہیں آپ, احکامات. اس میں عام طور پہ اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, دین کیا ہے, ایمان بالآخرہ. یعنی دین اسلام کا پہلا حصہ کیا ہے؟ عقائد. من ربو کا, ما دینو کا, مر رسولو کا. اسی کو آپ قبر کے تین سوال بھی کہتے ہیں, اسی کو اصول ثلاثہ بھی کہتے ہیں, اسی کو تھری فنڈامنٹلز آف اسلام بھی کہتے ہیں. بس اس کی فکر کیجئے. قرآن آپ کے میرے عقیدے کو ایسے کھول کے رکھ دیتا ہے کہ اس کے بعد تو ہمیں بالکل کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, और जो चीज़ बड़े ही दुख और तकलीफ़ के साथ मैं महसूस करती हूँ कि आज हमने दीन के नाम पे भी इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा डाल दी अपनी तालीम में, और कुरान का तो तर्जमा तक नहीं पता चलता। तो कुरान पाक को पढ़ने के बाद इंसान का अकीदा गलत नहीं रह सकता, याद रखिए। आज उम्मत जो फ़िरकों में बटी हुई दिखती है ना, उसकी वजह यह कि कुरान मिसिंग है। आप लोगों को कुरान दे दीजिए, उनके सब फ़िरके जमातें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा बुनियादी हिस्सा है अहकामात का, जिसको आप डूज़ एंड डोंट्स कहेंगे। ये करो ये नहीं करो, इसके करने से ये मिलेगा, इसके ना करने से ये फ़ायदा हो जाएगा, इसको अहकामात कहते हैं। ये कुरान पाक का एक बुनियादी हिस्सा है। तीसरी चीज़ कसस स्टोरीज़, अंबिया कराम के किस्से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आप सूरह यूसुफ़ में पढ़ते हैं और हज़रत मूसा का भी पढ़ते हैं, तो कसस कह लीजिए स्टोरीज़। फोर्थ थिंग है इमसाल, तमसीली आते हैं, दरब अल्लाहु मसलन, कभी का वद्रिब लहुम मसलन, यानी मिसालें क्या होती हैं। बस पूरे कुरान में ये चार ही चीज़ें हैं। हाँ, मौलाना शाह वलीउल्लाह ने इन्हीं के आगे ब्रांचेस की, लेकिन बुनियादी तौर पे देखें तो यही चार चीज़ें पूरे कुरान पाक में। अब आइए देखते हैं पहले पारे में क्या है। ये वो हिस्सा है, अगर आप छोटा छोटा करके सिर्फ हिंट्स लिख सकें और लिखिए, ये कोर्स लिखने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अपने कुरान से एक मोहब्बत भी महसूस होगी और आपका एक क्विज़ भी तैयार हो जाएगा इसके बाद इंशाल्लाह। तो पहले पारे के मज़ामीन को देखें, तो ये पारा सूरत फातिहा और उसके बाद सूरत अल बकरा की 141 आयात पे मुहित है। सूरत फातिहा में तीन ख़ास बातें हैं। अल्लाह की चार सिफ़ात हैं, जिसमें रब, रहमान, रहीम और मालिक। फिर इबादत करने और मदद मांगने के लायक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। अगर ये बात समझ आ जाए तो हमारे इंडो पाक का 99% शिर्क ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी तरह सीधे रास्ते पर चलने की दुआ, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, और ग़लत रास्ते से बचने की दुआ, गैरिल मखदूब अलैहिम वलद्दालीन। तो ये है पहले पारे का वो हिस्सा जो सूरत फातिहा से मुतल्लिक है। आगे चलें तो सूरत बकरा की 141 आयात जो पहले पारे में हैं, उनके पांच टॉपिक हैं। नंबर एक, इक़सामुल इंसान, इंसानों की किस्में, हिदायत के एतबार से इंसानों की पांच इकसाम। दूसरा इसमें है एजाजुल कुरान, मोजज़ा, वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फ़ातु बिसूरा, चैलेंज है कुरान का कि तुम्हें अगर ऐसा कोई और कुरान बना सकते हो तो बना लो। तीसरी चीज़ किस्सा आदम, हम सब का हक़ है कि हमें पता चले कि हम कौन हैं, कि हम बंदरों की औलाद हैं या इंसानों की, तो डिटेल से ये किस्सा आता है। फोर्थ थिंग पहले पारे में अहवाले बनी इसराइल, तकरीबन 10 रुकू या बनी इसराइल अस्कुरु की दो ब्रैकेटों के बीच में हैं, जिसमें माजी के मुसलमान बनी इसराइल उनका तारुफ़ करवाया गया। और पांचवा जो पारे के एंड तक जाता है वो है किस्सा इब्राहिम, वो क्यों थे, कैसे थे, क्योंकि हर कौम ने उन्हीं के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा। तो ये है जी पहले पारे का साइनोप्सिस। इसी के अंदर हैं वो सारी 141 प्लस 7 आयतें। आइए ज़रा इनके अंदर एक और गहरी नज़र डालते हैं, क्योंकि हमेशा पहले किसी के घर का दरवाज़ा खुलता है, फिर उसके बाद आप उसके मेन लॉन्च में आते हैं, फिर कमरों के दरवाजे। तो हम घर का मेन यानी गेट खोलकर अंदर आ चुके हैं, हमें पता चल गया कि ये घर कितने मरले कितने कनाल का है। अब हम एक एक कमरा खोलते हैं इंशाल्लाह। पहला कमरा जो कुरान खोलते ही हमारे सामने आता है वो सूरत अल फातिहा है, जिसमें 7 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। यहाँ रुक जाती हूँ। सूरत अल फातिहा को आप एक तराजू में बांध कर देखिए तो आपके सामने कुछ ऐसा इमेज बनेगा। देखिए अभी तक जो मैंने मांगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, ये तराजू का एक पलड़ा है। बीच में दो आयतें, एक आयत है बेसिकली उसके दो हिस्से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब दूसरा हिस्सा दूसरे पलड़े में जाएगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मख़्तूबी अलैहिम वलद्दालीन। सूरत फातिहा एक बैलेंस सूरत है। सूरत फातिहा का टॉपिक है फितरत इंसानी की तर्जुमानी। याद रखिए, हर बंदे की एक ही फितरत है, कुल्लू मौलूदिन, हर बच्चा फितरत पे पैदा किया जाता है। तो सूरत फातिहा बताती है कि इंसान क्या है, क्या चाहता है। आइए ज़रा इसके ऊपर एक और गहरी नज़र डालते हैं। सूरत फातिहा के मज़ामीन में अल्लाह के रब होने की बात है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में, यानी अपने अल्लाह को पहचानो, मारफत रब्बी। फिर अर्रहमानिर रहीम, निज़ाम रहमत, कि वो रब है लेकिन वो सख्त नहीं है, अलकहार नहीं, अलजब्बार नहीं है, वो अर्रहमान और अर्रहीम, इसमें मखलूक से उसकी मोहब्बत है। साथ ही जब बंदा रहमान रहीम सुनता है तो कहता है लो फिर तो खैर ही हो गई। तो कहा ना ना ना, मालिक यौमिद्दीन, मैं निज़ाम अदल का मालिक भी हूँ, दुनिया में भी अदल करूँगा, लेकिन अगर दुनिया में तुम मेरी किसी चीज़ से बच गए तो मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा दिन रखा हुआ है कि जिसको पाने के बाद तुम कहीं और जा ना सकोगे, और उसके बाद फिर इयाक नअबुदु से लेके आखिर तक बंदगी और इबादत सिर्फ़ वाहिद ज़ात की। क्या पता चला कि सूरत फातिहा आपको मुझे ये सिखा रही है कि एक रब के बन जाओ। अल्लाह की जब बड़ाई बंदे के दिल में आती है तो समझ आती है कि इसके सिवा कोई दर नहीं जहाँ मैं झुकूँ। तो फिर दिल तो बहुत कुछ मांगने को चाहता है, लेकिन मांगने वाला मांगता है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लिखिए पहली दुआ जो कुरान आपको मुझे मांगना सिखा रहा है, वो माल की नहीं है, वो औलाद की नहीं है, वो घर की नहीं, वो टेस्ला की नहीं, वो आईफोन 15-16 की नहीं है, वो हिदायत की है। क्योंकि हिदायत ही असल नेमत है। जिस बंदे को रब की कुदरतों का यकीन हो जाता है, फिर वो सिर्फ़ रब से ही मांगता है। और याद रखिए कि सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो कल पुल सरात में ढल जाएगा। जो इस दुनिया में सीधे रास्ते पर रहेंगे, वो कल पुल सरात से बड़ी इज्जत से गुजरते हुए आगे से आगे जाएंगे। तो लिहाजा आपको मुझे कुरान पाक के शुरू में बता दिया कि तुम खुद चूज़ करो कि तुम्हें किधर जाना है। एक थोड़ी सी भूख बढ़ा के सूरत फातिहा पूरी होती है, तो फिर कुरान पाक की सबसे तवील सूरा सूरत अल बकरा तरतीब में 2 नंबर की है, और इस पहले पारे में इसकी 141 आयात हैं। शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। पहली 5 आयात, टॉपिक लिखिए कुरान हकीम किस के लिए हिदायत है। जो नहीं लिख सके उसको छोड़ के आगे चल पड़े। इसी से तो हमें पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी किताब है। जो सिलसिला शुरू किया ना, पूरी 6000+ आयतों का टॉपिक इस सीरीज़ में मिल जाएगा। व्हाट एल्स डू वी नीड। इतने मुख्तसर वक्त में आपको पूरे 1 से 30 पारे की हर आयत का टॉपिक मिल जाए, और क्या चाहिए। अल्लाह करे हम इसको भी पूरा कर पा लें। मैं आपको आज से शौक दिला दूं, ये कुरान इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जिसने हिदायत की तलब से इसको पढ़ा उसको अल्लाह ताला ज़रूर हिदायत देता है। लेकिन कुछ लोग कठोर होते हैं, वो नहीं मानते। उनका तज़किरा आयत 6 और 7 में है। हिदायत से महरूम कौन रहते हैं, किनको हिदायत नहीं मिलती। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आयत नंबर 8 से 12 का टॉपिक क्या है, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ। फ़ायदों के हरीस, दोगले लोग, इसको आप मुनाफिक कह लें, अल्लाह ने यहाँ नहीं कहा, हिपोक्रेट्स। इधर का भी फ़ायदा ना छूटे, उधर का भी ना हो। हम कहते हैं दुनिया भी हमारी मर्ज़ी की और आखिरत भी हमारी मर्ज़ी की हो, यहाँ भी हम कुछ ना करें, वहाँ भी हम कुछ ना करें। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं होगा। फिर आयत नंबर 13 से 16 में, वैज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा मनन्नास, जब ऐसे दोगले लोगों को कहा जाता था कि तुम अबू बकर की तरह ईमान लाओ, उमर की तरह लाओ, तो कहते थे ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, नऊज़ु बिल्लाह, दे आर सो स्टूपिड, कैसे एक कॉल पे अपने घर का सामान लेके आ जाते हैं, सारा दिन नबी के पीछे फिरते रहते हैं, सारा दिन कुरान कुरान इनके हाथों में। उनको कुरान वाले लोग ना समझ लगते हैं। अल्लाह कहते हैं इनको बताओ कि घाटे का सौदा किया इन्होंने, यानी ऐसे लोग घाटे के सौदे वाले हैं। आयत 13 से 16 है। तो गोया कि आप देखिए कि सूरत बकरा के आगाज़ में हमने पहली 20 आयतों में 3 गिरोहों का तذکرہ देख लिया, ईमान वाले, कुफार और मुनाफिकीन। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह और यौम हिसाब, कुरान और पिछली किताबों पर ईमान लाते हैं। नमाज को कायम करते और ज़कात को अदा करते। अब अपना आप को चेक कीजिए, ये सेल्फ एनालिसिस है बस। मेरी इसमें किसी चीज़ में अगर कमी है तो इंशाल्लाह आज ही नियत करनी है कि इसको ठीक करना है। कुफार कौन है? जिनको पता भी चल चुका, सब कुछ पता है, नबी आ गया उनके बीच में, नहीं लेना तो नहीं लिया। जिसको नहीं सीखना होता वो नहीं सीखता। ऐसे ही लोग जो हैं जिनका तज़किरा यहाँ आ गया। और तीसरा वो ग्रोह है जो बज़ाहर ईमान के दावे करते हैं लेकिन उनके दिलों में कुफर छुपा है। उनको नबी का तरीका अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं नहीं, दीन भी रखो दुनिया भी रखो, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने अब दो मिसालें दी हैं। आयत 17 से 20 का टॉपिक लिख सकें तो लिख लें, कुफार और मुनाफिकीन के लिए तमासील। शुरू में बताया कुरान पाक के मज़ामीन में एक हिस्सा इमसाल का है। ये उसकी पहली मिसाल आपके मेरे सामने है, तमासीलुल कुरान। तो इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो फ़ायदों के लिए आएगा वो ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 21 से 22 का टॉपिक है इंसानियत के नाम रब का पैगाम। अब दूसरे लफ्ज़ों में लिख लीजिए, रब का पैगाम बंदों के नाम, कुरान हकीम की दावत इंसानियत के नाम। जहाँ कहीं आयुन्नास आए तो सोचा करें कि ये कुरान तो सब के लिए था। हम कितने खुशकिस्मत हैं यहाँ आकर बैठ गए। आपको अपने साथ दो चार नॉन मुस्लिम्स को लाना चाहिए था। क्या हो, कुरान तुम्हारा भी है और हमारा भी है। और इसी आयत से तो कई लोगों के दिलों के दरवाजे खुल गए। फिर उसके बाद आयत नंबर 23 से 25 का टॉपिक लिखिए मौजज़ा कुरान का। जो आपको दूसरी किस्में दी थी वो ये है, कुरान हकीम की अज़मत व इन कुंतुम फ़ी रैब मिम्मा नज़्ज़लना। यानी आज तक कोई इस कुरान जैसी कोई चीज़ नहीं पेश कर सका। और इट्स ट्रू, आप इस कुरान के अंदर जितना डूबते जाते हैं आप इसकी मोहब्बत में चूर होते हैं। फिर आयत 26 से 27, इन्नल्लाह ला यस्तहिया यद्रिब मसलम मा बऊदा। तो लिखिए कुरान हकीम से कौन गुमराह होते हैं? वो लोग जो बैठ के कहते हैं नहीं नहीं ये 1400 साल पुरानी बात है, नहीं 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 ये नहीं वो नहीं। यानी अगर अल्लाह ना करे आज हम में से भी कोई सोच से आकर बैठ गया ना कि ये क्या पुरानी किताब, हमें क्या फ़ायदा होगा टॉपिकों से। शैतान दिमागों में बोझ डालता रहता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को तो शर्म नहीं आती इस बात से भी। फिर आयत नंबर 28 से 29, इस पर एटलीस्ट मैंने 3-4 दफ़ा दर्स दिया ये पिछले फ्यू मंथ्स में, जिसमें इंसान की ज़िंदगी के 5 मराहल, कई फतक फ़ुरून बिल्लाहि वकुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्म युमीतुकुम, मौत व हयात के बारे में कुरान पाक का नुक्ता नज़र। आज मैं और आप दूसरे फेज़ से गुजरे हैं। हम सब पीछे रूहों से गुजर चुके। आज ये सेकंड फेज़ है दुनिया का। तीसरा हमारी मौत होगी, फोर्थ हमारा कब्र का दौर होगा, एंड फिफ्थ एंड लास्ट विल बी जन्ना या जहन्नम। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें वहाँ की रसवाई से बचाए। फिर इसके बाद आयत नंबर 30 से 34 में आदम का किस्सा। शुरू में बताया आपको किस्सा है आदम, तो इंसान की अज़मत व इसकाल रब्बुक लिल मलाइका। ये किस्सा चलता है आगे 35 से 37 में, वकुल न या आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। ज़मीन पर होने वाले इम्तिहान का तजुर्बा, अल्लाह ने आपके मेरे माँ बाप आदम और हव्वा को जन्नत में बचाया। तो स्टोरी ऑफ आदम यानी आदम और इबलीस का किस्सा हमें क्या सिखाता है? कि डार्विनिज्म की थ्योरी ठीक नहीं। हमारे दादा परदादा बंदर नहीं थे, हम इंसानों की नस्ल से हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया और दुनिया में इंसान का मुकाम बना दिया कि तुम्हें खलीफा बनना है। खलीफे से क्या मुराद है ये दौरे कुरान में इंशाल्लाह खोल के बताऊँगी। और इबलीस का अहद कि मैं रहती दुनिया तक के आदम के बच्चों को हिदायत से भटकाऊंगा। वर्स्ट एनिमी आपका मेरा हमारी नस्लों का, जो चाहता है कि हम हिदायत से दूर रहें। तो क्या पता चला, हज़रत आदम का जन्नत में एक टेम्परेरी ठिकाना था, क़याम था, और ये उनकी आजमाइश थी। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। फिर अल्लाह ने उनकी खताएँ माफ़ कर दी। वो दुआ सूरत अलराफ़ में आती है। पता क्या चला कि आज मैं और आप जो अल्लाह के इन हुक्मों को मानेंगे फिर उनको ना खौफ होगा ना गम। बस सब यंग बच्चियों को मैं ये आयत पे गौर करवाऊंगी इंशाल्लाह। आप देखिए आज पूरी दुनिया डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अंक्स और न जाने किस किस बीमारी का इलाज ढूंढ रही। फिर इसके बाद आयत नंबर 38-39 का टॉपिक है दुनिया के इम्तिहान में कौन कामयाब होगा। बोलिए हम कामयाब होंगे कब? जब हम इस किताब की पैरवी करेंगे। कुल नह भी तुम इन हजमिया فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں پہ سورت کا پہلا حصہ پورا ہو گیا.